जयो यशोदानन्दना जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय व्रजजनरञ्जन जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्जबिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 26। इसका शीर्षक है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक क्रमांक 13। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। तृप्तरुष्ट स्तृप्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः नवचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीं तृप्तरुष्ट सुदत्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः नवचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीं तृप्तरुष्टसृतश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः नवचष्टवरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीं। तृप्तरुष्टसृतश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः वचस्तवरारोहान्। तृप्तरुष्टसृतश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः न वचस्तवरारोहान्। कन्दर्पाकृष्टमानसा नवचष्टवरारोहा गृहिणीं गृहमेधि मते तृप्ता तृष्ट हृष्ट प्रसन्न श्रुतुप्त अत्यंत गर्वित च भी कंदर्प कामदेवसे आकृष्ट आकर्षित मानसः उसका मन न नहीं वचस्ट किया वरारोहम उच्चतर चेतना गृहिणीं पत्नी को गृहमेदिनीं जो अपने पति का भौतिक जीवन में रखती है। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रपात जी के द्वारा। शिल प्रपात जी की जय। अनुवाद भोजन कर लेने तथा अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रफुल्लता हुई। वह उच्चतर चेतना तक न पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया और उसे अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई जिसने उस गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था जिसने उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था। तात्पर्य यह श्लोक उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने को कृष्ण चेतना तक ऊपर उठाना चाहते हैं। जब कोई भक्त गुरु से दीक्षा लेता है तो वह अपनी आदतें बदल देता है और मांस खाना अवैध मैथुन करना जुआ खेलना तथा शराब पीना छोड़ देता है। शास्त्रों में सात्विक आहार के अंतर्गत गेहूं चावल तरकारी फल दूध चीनी तथा दूध की वस्तुएं बताई गई है। चावल दाल रोटी तरकारी दूध तथा चीनी जैसे सामान्य आहार संतुलित होते हैं किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि दीक्षा प्राप्त पुरुष प्रसाद के नाम पर अत्यंत विलासी गरिष्ठ भोजन करता है। अपने पूर्व पापमय जीवन के कारण वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होता है और खूब डट कर अच्छा भोजन करता है। यह स्पष्ट देखा गया है कि जब नवदीक्षित कृष्ण भक्त अधिक भोजन करता है तो उसका पतन हो जाता है। वह शुद्ध कृष्ण चेतना भक्ति तक न कर उठकर कामदेव द्वारा आकृष्ट हो जाता है। तथाकथित ब्रह्मचारी स्त्री के द्वारा विचलित हो जाता है और वानप्रस्थ पुनः अपनी पत्नी से संभोग करने के लिए आकृष्ट होता है अथवा वह किसी नई पत्नी की तलाश करने लगता है। हो सकता है कि भावनावश वह अपनी पत्नी छोड़कर भक्तों एवं गुरु की संगति में चला जाए, किंतु अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण वह वहाँ ठहर नहीं पाता। वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होने से कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के बजाय नीचे गिर जाता है और इंद्रिय सुख के लिए दूसरी पत्नी ले आता है। नारद मुनि ने श्री भागवत में कृष्ण चेतना से भौतिक जीवन में नवदीक्षित भक्त के पतन का वर्णन किया है। त्यक्त सुधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्वो पततो इति यत्र क्वा वा भद्रमुष भूमत्पुष किं को वार्त आप्तो भजताम स्वधर्मतः। इससे सूचित होता है कि यद्यपि नवदीक्षित भक्त अपरिपक्वता के कारण कृष्ण भावनामृत से नीचे गिर सकता है, किंतु उसकी कृष्ण सेवा व्यर्थ नहीं जाती। किंतु जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में अथवा तथाकथित सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्य में अड़िग रहता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता, उसे कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए और वर्जित कार्यों से दूर रहना चाहिए, जिसका उल्लेख रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में किया है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्विर भक्ति नश्यति। नवदीक्षित भक्त को न तो ज़्यादा खाना चाहिए और न ही आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना चाहिए। अधिक खाना और अधिक धन संग्रह करना अत्याहार कहा जाता है। ऐसे अत्याहार के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है, यह प्रयास कहलाता है। हो सकता है कि ऊपर ऊपर से कोई अपने को विधि विधानों के प्रति अत्यंत निष्ठावान दिखाए, किंतु साथ ही साथ भीतर भीतर उनके पालन करने में दृढ़ न रह सके, यह नियमाग्रह कहलाता है। अवांछित व्यक्तियों के साथ मिलने से अर्थात जनसंघ से वह काम तथा लोभ से दूषित हो जाता है और भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोसुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो तो अभी मैं सभी उपस्थित वैष्णव के चरण में प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस श्लोक के ऊपर कुछ बोल पाऊँ। तो यहाँ बहुत ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है। महाराज पुरंजन अपनी पत्नी को बिना पूछे ही जंगल में शिकार करने जाते हैं और शिकार के समय बहुत जन प्राणियों को हत्या करते हैं और उसके बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से भूख और प्यास लगती और इसकी व्यवस्था तो जंगल में नहीं होती, तो इस कारण वो वापस अपने महल लौट के आते हैं। और क्योंकि वो पहले भौतिक प्यास, जो शारीरिक प्यास है और भूख है, उसको वो मिटाते और ये मिटाने के बाद स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को फिर जो उसका मानसिक भूख और प्यास है उसके प्रति उसको जागरूक हो जाता है। तो उसके बाद उन्हें लगता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो बाकी का दूसरा जो मानसिक भूख है उसको मिटाने के लिए वो फिर पत्नी का जानकारी पूछते हैं वो कहाँ पर है। तो क्यों इसलिए वो करते हैं, क्योंकि उनकी काम वासना बढ़ जाती है भोजन के बाद, यही स्वाभाविक फल होता है शरीर का, ईटिंग के बाद मेटिंग और उसके लिए डिफेंडिंग, ये चलता रहता है भौतिक जगत में। तो इसी कारण उनका जो खाना हो गया है, भूख मिट गई, तब वह सोचते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है और वो बोलते हैं कि ये पत्नी का विशेष कर्तव्य क्या है कि गृहस्थ जीवन में अपने पति को प्रसन्न रखना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं कि भक्त को अपना जीवन कैसा व्यापन करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि यह श्लोक उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने को कृष्ण चेतना तक ऊपर उठाना चाहते हैं। तो हमें ये इस श्लोक से जानना है, अगर हमें कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़ना है तो हमें ये जो भूख है, भौतिक भूख और प्यास, उससे ऊपर उठना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बहुत भागवत में भी बहुत जगह वर्णन आता है कि जहाँ राजा को भूख और प्यास लगती और उसके कारण वो कितने समस्या में गिर जाते। तो एक बार महाराज अयाति वो भी जंगल में शिकार करने जाते और उन्हें भी प्यास लगती और प्यास बुझाने के लिए वो कुआं ढूंढ रहे थे और एक कुआं होता है जंगल में और वहाँ जंगल में एक बगीचे में, तो वहाँ पर वो कुआं में पानी पीने जाते हैं और देखते हैं कि उस कुएं के अंदर पानी के साथ साथ एक स्त्री भी थी और वो स्त्री की थे, उस स्त्री के ऊपर कपड़े नहीं थे। तब महाराज को बहुत दुख लगा और उन्होंने अपने करुणावश एक राजा के भाव से उनकी रक्षा के लिए अपना वस्त्र उनके ऊपर दिया। तो वो वस्त्र को लपेटने के बाद वो स्त्री उनको बोलती है कि मुझे आप कृपया इस कुएं से बाहर निकालिए। फिर याति महाराज उनको अपने हाथ देकर उन्हें वो कुएं से बाहर निकालते। जैसे ही वो कुएं से बाहर आती है तो वो स्त्री उन्हें बोलती है कि अभी आपने मुझे स्पर्श किया है तो अभी आप ही मेरे पति बन सकते, क्योंकि वैदिक सभ्यता ऐसी थी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पराय स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता और स्त्री भी किसी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श करने नहीं देती थी। तो अभी कलयुग में तो ये संभव नहीं है। अगर लोग लोकल में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या बहुत जगह पर ऑफिस में भी जा रहे हैं तो लोग तो हैंडशेक करना उसका क्या है, रीति बन गए, रीति रिवाज है। अगर आप हैंडशेक नहीं करेंगे तो लोग आपको ऑफिस से निकाल देंगे। हाँ, तो कलयुग में ये प्रथा नहीं कि कोई किसी को स्पर्श करेगा तो उसको उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, लेकिन उस जमाने में ऐसा था कि कोई स्त्री अपने शरीर को किसी पर पुरुष को हाथ लगाने नहीं देती थी। तो उनकी तरफ से भी यही रहता था और पुरुष भी किसी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाता। तो राजा बोलते हैं कि अरे ऐसा आपसे मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि आप एक ब्राह्मण कुल की स्त्री हैं। तब जो देवयानी है वो बोलती है कि अपना जो विवाह है वो दैव के कारण हुआ है, दैव योग से हुआ है। तो हम अभी गंधर्व के विवाह के जैसा विवाह कर सकते। और वो बोलती है कि मुझे भी श्राप मिला है क्योंकि मेरे जो पिता है शुक्राचार्य उनके आश्रम में बृहस्पति का लड़का कच्छ सीखने आ रहा था, तब मैं उसके द्वारा आकर्षित हो गई और मैंने उससे विवाह के लिए पूछा था। तो कच्छ बोला कि आप गुरु पुत्री हैं तो मैं गुरु के जैसा ही आदर करता हूँ, तो आपसे मैं विवाह नहीं करूँगा। उस प्रकार उन्होंने मुझे दुख दिया था। तब मैंने उनको श्राप दिया कि आपने जो मृत संजीवनी का ज्ञान प्राप्त किया है वो आप भूल जाएंगे। तब कज भी गुस्से से मुझे श्राप दिया कि आपके अंदर कुछ भी ब्राह्मण के गुण नहीं, इसलिए आप किसी निचले जाति के व्यक्ति से आपका विवाह होगा, क्षत्रिय के साथ। तो फिर दैवयानी ने उनको बोलती है कि ये भगवान का नियोजन है कि मेरा आपके साथ ही विवाह होना चाहिए, तो आप कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। तो ये हम देखते हैं। और ऐसा ही प्रकार आता है जब परीक्षित महाराज भी भूख प्यास से आश्रम में जाते हैं शमिक ऋषि के, और इतने उनको भूख प्यास लगती है कि उनको बहुत गुस्सा आता है कि ये शमिक ऋषि मेरा आदर सत्कार नहीं कर, क्योंकि राजा ही एक भगवान का स्वरूप होता है और ऋषि मुनि लोग उनका आदर सत्कार करते थे। और हालांकि उस समय की प्रथा थी कोई व्यक्ति घर पे आता है तो उसे कम से कम पानी भोजन दिया जाता था, तो इसलिए शमिक ऋषि तो पूरे अपने समाधि में मग्न थे, तो उन्हें पता भी नहीं कि राजा आया है और गया है। लेकिन राजा गुस्से से बाहर जाते हैं और आश्रम के बाहर उनको एक मरा हुआ सांप मिलता, तो उनका क्रोध इतना परे चला जाता है कि उनको लगता है कि ये मुनि जो ढोंग करके तपस्या कर रहा है उसे हमें मुझे सबक सिखाना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो परीक्षित इतने अच्छे कुल में जन्मे हैं स्वाभाविक रूप से उनसे ऐसा कार्य अपेक्षित नहीं था, लेकिन वो भूख प्यास की वजह से इतने क्रुद्ध हो गए कि वो अपना जो संस्कार है उसको भूल कर वो मरा हुआ सांप शमिक ऋषि में ऋषि के गले में डालते। और सच में शमिक ऋषि ढोंग नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उसी तरह एकदम अचल रहे, हाँ जैसे वो पहले थे वैसे, ऐसा नहीं कि सांप गले में गिरा है तो उसको फेंक के फिर उनको, हाँ अगर वो ढोंग कर रहे थे तो सच में क्रुद्ध हो जाते थे, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं चला कि क्या चल रहा है। तो ये है भूख और प्यास का व्यक्ति के अंदर होने वाला प्रभाव। तो भौतिक जीवन में लोग भूख प्यास मिटाने के लिए इतने आयोजन करते हैं। तो इस तरह ये तो साधारण भौतिक भूख प्यास है, उसके अलावा और भूख प्यास है वो है मानसिक, है ना। लोगों को गर्व का या अभिमान होता है, उन्हें भूख होती है किसका, प्रतिष्ठा का, मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, मेरा आदर होना चाहिए, मेरा सत्कार होना चाहिए, ये भी एकदम सटल, सटल माने सूक्ष्म भूख प्यास होती है, लोग उसके पीछे लगे रहते। कभी कभी उस भूख प्यास के लिए लोग शारीरिक भूख प्यास को भी गौण समझते, है ना, वो हड़ताल करने बैठ जाते या ऐसा करने बैठ जाते, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा और ये चाहिए। तो ये सब भौतिक भूख प्यास है। तो इससे परे सिर्फ भक्त ही आ सकते हैं। तो भक्त जो कृष्ण भावना भावित है वो व्यक्ति कृष्ण के प्रेम से इतना अप्लावित हो जाता है कि उसे भौतिक भूख प्यास सताती नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि जो परीक्षित महाराज, हाँ जिनको थोड़े देर पहले भूख प्यास लगी थी और उन्होंने शमिक ऋषि का अपमान किया था, वही व्यक्ति जब सुखदेव जी का शरण लेते हैं और उनसे जब वो भागवत का श्रवण करते हैं, श्रवण कथा सुनने सुनते हैं, तब 7 दिन रात कथा चल रहा था और ना वहाँ पर लंच ब्रेक या जूस ब्रेक कुछ भी नहीं रहते। तो उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि वो भौतिक भूख भूख और प्यास के परे जाते हैं। तो यही लक्षण होता है जो अध्यात्म में आगे बढ़ चुका है। तो जो 26 गुण होते हैं भक्तों के अंदर जो होते हैं, उसके अंतर्गत एक आता है मितभूख, जो थोड़ा सा खाकर भी संतुष्ट होता है। तो अभी मुझे बताने में लज्जा हो रही है क्योंकि एक गुण मेरे अंदर नहीं है, मेरा वजन वगैरह सब भक्ति में आने के बाद बढ़ गया है। हालांकि जब मैं भौतिक जीवन में खाता नहीं था, मेस वगैरह का तो खाने लायक नहीं रहता था, लेकिन जब भक्ति में आने के बाद जो प्रसाद मिला उसका हम तो भौतिक ये विवरण भी नहीं दे सकते, इतना अच्छा प्रसाद। लेकिन प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि भक्त होने के बाद भी व्यक्ति को मितभूख की सीमा बनाए रखनी चाहिए। तो वो सब शक्य है जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगत है, वो लोग कभी भी खाने और पीने के लोभ में जाते नहीं। जैसा हम देखते हैं अम्बरीश महाराज भी, जिन्होंने 1 साल तपस्या की और जस्ट उनका उपवास छोड़ने का समय हुआ था और दुर्वास मुनि आ गए और उनका आदर्श तिथि करने के बाद वो बोले मैं नहा के आता हूँ फिर प्रसाद लेता, और पारना का समय आ रहा था नज़दीक, तब उन्होंने सिर्फ चरणामृत लेकर अपना भूख और प्यास निभा दी। और बाद में देखते हैं 1 साल तक उन्होंने फिर से प्रतीक्षा की। तो ये स्वाभाविक लक्षण है भगवान के भक्त की, जो इस भौतिक भूख और प्यास जो षड्विकार है उनसे वो परे हो जाते, तो उन्हें भौतिक भूख और प्यास सताती नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी यहाँ पर चेतावनी देते हैं कि भक्त को जो दीक्षित है या जो भी भक्ति मार्ग में लगा है उसे अपने आहार के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, है ना। तो हालांकि हमें छूट दी गई है कि भगवान का प्रसाद खाने के लिए, लेकिन हमें उस छूट का गैर फायदा लेना नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी मेरे जीवन में उतार दूँ। लेकिन जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आजकल ऐसे अलग अलग डिजीजेज है, मीन्स व्याधियाँ हैं कि उसका जो उपचार है वो बहुत ही भयानक होता है। जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म है, 5 प्रकार के उपचार होते हैं। एक होता है वमन, जो मैं अभी कर चुका हूँ, उसका बाद है विरेचन, फिर रहे भस्ती, और 2 है अन्य, वो पता नहीं क्या है। तो इसमें एक मुंह से निकालते हैं, एक पिछले भाग से निकालते हैं, एक अलग अलग प्रकार से अंदर द्रव्य निकाल के फिर उसको बाहर निकालते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के उपचार चलते हैं जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल ना कर पाए उसके लिए, हाँ। तो वमन में जिसका ऊपर का भाग खराब है उसके साथ वमन की प्रक्रिया की जाती, और जिसका नीचे का भाग है खराब है उसके साथ विरेचन हो जाता है, और जिसका वायु असंतुलित है उसके साथ भस्ती किया जाता है। तो ये अलग अलग उपचार है, उपचार को ही सुनकर व्यक्ति को अपना जो आहार है उसके ऊपर संयम करना चाहिए। अगर जो सुनकर नहीं समझते वो फिर उसका उपचार करने के बाद उनको समझ आते हैं, और जो उसके परे है उपचार लेने के बाद भी फिर से अगले उपचार के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कुछ कुछ लोग हर साल आते हैं वमन करने के लिए, तो 7 दिन वमन करो और बाकी के 356 वगैरह रहेगा दिन वो एंजॉय करो, ऐसा लोगों का गणित होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भक्त है उसको संयमित होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं जो गुरु का आश्रय लेता है उसके अंदर ये गुण आते हैं, और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी कितना अपने भक्तों के अंदर परिवर्तन लाया है। जो अमेरिका जैसा देश है जहाँ पर व्यक्ति मांसाहार और मद्यपान ये तो उनके लिए दूध और चपाती खाने जैसे, हाँ, तो उसको तो कोई सिखाना नहीं पड़ता कि ये पाप कर्म है, वो तो स्वाभाविक है और सभी लोग कर रहे होते। वहाँ बचपन से बच्चे को पता ही नहीं कि शाकाहार क्या होते हैं, तो उन व्यक्तियों को क्या बोल सकते। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भी जो प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के बाद, उन्होंने इतना परिवर्तन आया कि वो लोगों ने ये सब छोड़कर सिर्फ भगवान का प्रसाद लेकर अपना जीवन एकदम पवित्र कर चुके हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से भगवान के भक्त से अपेक्षित है कि वो अपना इंद्रिय संयम करे, जिह्वा को संयमित करे। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो गुरु का आदेश है कि हमें अपने आहार विहार के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, अगर ऐसा हम अगर सुनते नहीं तो हमारे ऊपर काम विकार का प्रलोभन हो जाता है। तो जिसका आहार के ऊपर संयम नहीं है, उसका स्वाभाविक रूप से बाकी की जो नियम है उसके ऊपर भी संयम नहीं रह सकता है। तो इसके अंतर्गत एक कथा थी कि एक मुनि थे, उनका नाम था विभांडक। वो जंगल में बहुत तपस्या करते थे और एक बार उनके पत्नी ने उनको प्रलोभित किया, उन्हें पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हुई। तो उन्होंने अपने पति को बोला कि मुझे आप पुत्र प्राप्ति चाहिए मुझे। तो विभांडक ने बोला कि आप क्या करिए, एक हिरण का रूप लीजिए और मैं भी हिरण का रूप लेता हूँ, फिर मैं आपको पुत्र प्राप्ति कराता हूँ। तो उस समय फिर कुछ कारणवश वो स्त्री का देहांत हो जाता है और चली जाती है, और वो जो पुत्र उनको प्राप्त होता है उसका नाम है ऋषिशृंग। तो ये पुत्र कैसा था, उसको मनुष्य देह था लेकिन उसके शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर दो छोटे से शृंग थे। तब ये जो दुख उनको प्राप्त हुआ था स्त्री की वजह से, तो विभांडक ने सोचा कि मैं मेरे पुत्र को आजन्म ब्रह्मचारी बनाऊँ, अखंड ब्रह्मचारी बनाऊँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आश्रम की 80 किलोमीटर में कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी, उसको इतने अच्छी तरह से उसको आरक्षित कर दिया था। और उस पुत्र को उन्होंने इतने अच्छे से शिक्षा दी, उसको सिर्फ उन्होंने कंदमूल और फल यही खिलाया और कुछ नहीं खिलाया, और वो पुत्र एकदम अच्छा ब्रह्मचारी बना। उसी समय पड़ोस देश में जो रोमपाद महाराज का देश था, अंग देश माने अभी का बंगाल, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी। तो महाराज रंग ने, रोमपाद ने अपने ऋषि मुनि को जो पुरोहित थे उनको पूछा कि क्या इसका मार्ग है। तो वो बोलते हैं कि अगर यहाँ इस धरती पर अगर कोई अखंड ब्रह्मचारी आता है तो ही तभी वर्षा होगी। तो फिर महाराज पूछते हैं रोमपाद की, कौन है ये अखंड ब्रह्मचारी, किधर है? तो वो बोलते हैं कि पास में ही, पड़ोस में ये ऋषिशृंग नाम का बड़ा अच्छा ब्रह्मचारी है, तो आप उसको लेके आइए। तो फिर महाराज को प्रश्न पड़ता है कि कैसे लेके आना है उसकी, उनको बाकी लोगों को पता होता है कि वहाँ पर विभांडक है जो बहुत क्रोधी है, उनको बहुत गुस्सा आता है और वो कभी भी किसी को सहन नहीं करती, और इस जो पुत्र है वो उनका बहुत आज्ञाकारी, वो उनको छोड़कर कभी आ नहीं सकता। तो फिर राजा बड़े से बड़े जो वहाँ के वैश्य थे उनको बोलते हैं कि आप ये कैसा भी कर कर ये जो ब्रह्मचर्य है उसको लेके आई। तो फिर वो जो वैश्य है वो क्या करते हैं, एक मुनिपुत्र का वेश धारण करते और पूरी जानकारी करते कि विभांडक का आश्रम में कब रहते हैं, कब बाहर जाते हैं, वो सब जानकारी करने के बाद फिर जब विभांडक एक दिन बाहर चले जाते तो ये जो स्त्री है जो मुनि का वेश धारण कर कर वो विभांडक के आश्रम में आते हैं। और ये जो ऋषि पुत्र है वो जब उनको देखता है तो एकदम प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा है अपने पिता के अलावा कोई सुंदर रूप को, क्योंकि पिताजी का दाढ़ी और वो मुनि का वेश है और यहाँ पर एकदम सुंदर व्यक्ति उनको दिखते। तो वो उनका आश्रम में सत्कार और आदर कर कर बुलाते और फिर वो बोलते हैं कि आप मुनिवर कहाँ से आए हैं, किस देश से आए हैं? तो फिर वो मुनिवर बताते हैं, हम इधर से आए फलन फलन जगह से, और वो उनको बोलते हैं कि आप कृपया मेरा ये हमारा दिया हुआ ये भोजन स्वीकार कीजिए। तो उस समय पहली बार ऋषि शृंग कंदमूल के अलावा कुछ खाता है, ये रसमलाई या संदेश या मिठाई ये सब उन्होंने पहली बार खाया। और वो खाने के बाद वो खाने से उनका परिवर्तन हो गया, इतना अच्छा मधुर भोजन उन्होंने स्वीकार किया। फिर उसके बाद उन्हें जब वो मुलायम स्पर्श हुआ वो मुनि कुमारों का, तो उस कारण उनका चित्त पूरा भ्रष्ट हो गया। और हालांकि वो मुनि कुमार उनको छोड़ के चले गए, लेकिन वो मीठा टेस्ट और वो मुलायम स्पर्श उनकी चेतना के ऊपर पूरा तरह से प्रभावित हो चुका था। और ऐसे प्रभावित चेतना से उनका चित्त उनकी जो तपस्या है उससे हटने लगा। और जब विवांडक मुनि आते हैं और वो देखते हैं कि अपने पुत्र के अंदर उसका जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो उनको लगता है कि यहाँ पर कोई आया था। तो वो पूछते हैं कि कोई यहाँ आया था, तो बोलते हैं उनका पुत्र बोलता है कि हाँ यहाँ पर एक सुंदर मुनि कुमार आए थे, उनके पास बहुत अच्छी अच्छा प्रसाद था। तो पिताजी फिर उनको चेतावनी देते कि तुम्हें ऐसा कुछ खाना नहीं है और उनसे दूर रहो। लेकिन फिर भी ये जीव का स्वभाव है, वो उससे आकर्षित हो गया और बाद में उसे वो मुनि कुमार उठा के लेके जाते नहीं, वो उनके साथ चला जाते हैं। और जैसा ही वो पहला कदम रोमपाद महाराज के राज्य में रखता है अंग्रेज, वहाँ पर घनघोर वर्षा होती है ना। तो ये है अपने संयम न रखने की वजह से ये मुनिपुत्र का ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जो भी कृष्ण भावानुभवित में बस के रहना चाहता है, उसलिए प्रभुपाद जी उन्हें चेतावनी देते हैं कि अपनी जीवा के ऊपर संयम रखे। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा करते हुए भी उसका पतन हो जाए, तभी भी उसका कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत समय लगेगा आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो कृष्ण भावना भावित होने के बाद व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर रूप गोस्वामी ने जो हमें उपदेश दिया है उसके बारे में फिर से दोहराते हैं और हमें सचेत करते हैं कि जो कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहता है उसे ये जो छह अंग है जो भक्ति को विनाश कर सकते उनसे बच के रहना चाहिए। तो सबसे पहला है अत्याहार, तो उसके ऊपर मैं कुछ चर्चा करूँगा। ये भक्त्या लोग जो भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है उसके अंतर्गत मैं एक एक चीज के ऊपर थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले है अत्याहार। तो अत्याहार माने सिर्फ जिह्वा से खाने वाला चीज को अत्याहार नहीं बोला जाता है, हमारे और भी इंद्रियां हैं जो आहार स्वीकार करती, जैसे आंखें देखती है, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती, और जो नासिका है वो स्मेल करती, माने कुछ सूंघती है। तो ये चीजें से द्वारा भी हम आहार करते, तो उसकी भी अत्याहार होना नहीं चाहिए, है ना। तो आँखों से सिर्फ भगवान या भक्तों को देखना चाहिए, नाकों से सिर्फ भगवान का जो तुलसी है उसका सुगंध लेना चाहिए, और कानों से सिर्फ भगवान के गुणगान सुनने चाहिए, और नासे और त्वचा से सिर्फ भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ये छोड़कर बाकी कुछ कर रहे हैं तो उसे अत्याहार बोला गया है। और साथ ही साथ श्री राधा जत्न की जाए, साथ ही साथ अत्याहार का मतलब है जो हमारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा कलेक्ट करना या अपने पास रखना, तो उसे भी अत्याहार बोला गया। अगर किसी का जीवन किसी मात्रा में कितने धनराशि में अगर अच्छे से व्यतीत हो रहा है, तो उसे प्रयास नहीं करना चाहिए और धनराशि इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि अत्याहार के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जो जरूरत से ज़्यादा चाहिए वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो ये प्रयास के भी अलग अलग प्रकार है। तो ये प्रयास क्या होता है, प्रयास की वजह से व्यक्ति को भक्ति के लिए समय नहीं मिलता, है ना। जो समय हमें भक्ति के लिए चाहिए उसको छोड़कर हमारा वह स्वयं समय अन्य चीजों को एकत्रित करने में लग जाएगा और उसकी वजह से भक्ति के ऊपर दुष्परिणाम होगा। तो ऐसे प्रयास हमें करना चाहिए। इसलिए उसे बोला जाता है यूजलेस लेबर। तो प्रयास जितना भक्ति को रखने के लिए चाहिए उतना ही हमें करना चाहिए। तो अलग अलग प्रयास के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं। एक है ज्ञान का प्रयास। तो जो भौतिकवादी मायावादी लोग हैं उतना ज्ञान का प्रयास करते हैं कि वो भक्ति का ज्ञान छोड़कर अन्य ज्ञानों के प्रति आसक्त हो जाते हैं और वो केवल अद्वैत में उजल जाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कर्म प्रयास, कि ऐसा कर्मकांड में व्यक्ति लग जाता है कि वो भक्ति छोड़कर सिर्फ कर्मकांड में लग जाता है। जैसा हम देखते कि यज्ञ पत्नी के जो पति थे यज्ञ ब्राह्मण वो यज्ञ करते गए विष्णु की प्रसन्नता के लिए, लेकिन जब विष्णु स्वयं अपने भक्तों को भेज रहे और प्रसाद मांग रहे तो वो उनको भी ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसे कर्म का प्रयास कुछ लाभ का नहीं। तो कभी कभी भक्ति हमें आसान लगता है कि उसमें कुछ यज्ञ नहीं है, सिर्फ माला जप करना है, तो हमें उससे उतना प्रभाव नहीं लगता है। लेकिन जब हम बड़े यज्ञ और बाकी की कार्यक्रम कलाप करते हैं तो हमें लगता है कि वो भक्ति, लेकिन वास्तविक रूप से भक्ति बहुत आसान है। तो इसलिए श्रम ही बन जाता है। ऐसे जो कर्म के प्रयास के लिए व्यक्ति लग जाता है उससे वो श्रम केवल हो जाता है। और तीसरा प्रयास के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं वो है योग प्रयास। अष्टांग योग के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, तपस्या करता है, जब गर्मी के सीजन में आग लगा के बैठता है, ठंडी के समय वो गंगोत्री में बर्फीले पानी में जाकर तपस्या करता है। तो ऐसा योग प्रयास भी उचित नहीं। फिर मुक्ति प्रयास, तो ये जो सायुज्य मुक्ति है उसके लिए प्रयास करना वो भी श्रम ही है। और तीसरा पांचवा भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं प्रतिष्ठा प्रयास। व्यक्ति कभी भक्ति में आने के बाद प्रतिष्ठा के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, हालांकि वो वैराग्य का पद स्वीकार करता है और भौतिक इंद्र तृप्ति से परे हो जाता है, लेकिन उसका क्या हो जाता है, प्रतिष्ठा के वो बलि गिर जाते हैं। तो ये जो प्रयास है उससे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। एक ही प्रयास हमें करना है, वो है भगवान की संतुष्टता, भगवान के भक्तों की संतुष्टता। वो प्रयास है पॉजिटिव, वो प्रयास हमें अपेक्षित है। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया है प्रजल्प। तो प्रजल्प के सात प्रकार हैं। मूर्खता पूर्वक बात करना, दूसरा है वितंड, तीसरा है किसी की निंदा करना या विवाद करना, किसी के अंदर दोष ढूंढना, किसी के दोष के बारे में बखान कर, और किसी वैष्णव की निंदा करना, और भौतिक जो टॉक्स, भौतिक जो चर्चा है इलेक्शन वगैरह उसके बारे में चर्चा करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रजल्प के अंदर। तो ये प्रजल्प से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में गुण गाना चाहिए, भगवान की जो प्रार्थना है उसको दोहराना चाहिए, और भगवान के जो श्लोक है या जो भगवान की प्रार्थना है उसे दोहराना चाहिए। इससे हम ये जो प्रजल्प है इस दुर्गुण से बाहर आ सकते हैं। और चौथा यहाँ पर बताया गया है नियमाग्रह। किसी विधि विधान को ज़्यादा उसके जो उसके परिणाम की जांच नहीं करते हुए सिर्फ नाम के वास्ते पालन करना या उसको छोड़ देना। एक सिपाही था, उसको मंदिर के बाहर रखा गया था, उसे बोला गया था किसी को भी चप्पल पहनकर अंदर भेजना नहीं, सबको चप्पल यहाँ पर स्टैंड पे उतारने के लिए बोलना। तो उसको सिखाया गया था, उसने सोचा कि हाँ इसका ये नियम है हमारे मंदिर कि व्यक्ति को यहाँ पर चप्पल छोड़ना है और अंदर जाना है। तो एक फैमिली अपने गाड़ी में आते और गाड़ी में चप्पल छोड़ देते और वो नंगे पैर वहाँ पर आते मंदिर में जाने के लिए। तो वो चौकीदार उनको बोलता है कि आप अंदर जा नहीं सकते। वो बोलते क्यों नहीं जा सकते, वो बोलते आप चप्पल आपको यहाँ पर उतारना। वो बोलते अरे हमने ऑलरेडी उतारे उधर गाड़ी में। नहीं, आपको यहाँ पर उतरने, गाड़ी में नहीं। तो ये है नियमाग्रह। तो हम भी भक्ति में आने के बाद कुछ कुछ नियमों के ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं कि उसके वो बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है उसको ही हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि सबसे बड़ा नियम क्या है, वो है भगवान को सदैव स्मरण करना, और सबसे बड़ा निषेध क्या है, भगवान को कभी ना भूलना। तो ये नियम के बारे में। और जो पांचवा है वो है जनसंग। तो हमें ऐसे व्यक्तियों की संग नहीं करना चाहिए जो हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं। तो उसमें आते हैं मायावादी लोग, भोगी लोग, और जो लोग इंद्र तृप्ति के पीछे लगे पड़े हुए, और जो अपोजिट सेक्स, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो भक्तिवेदांत ठाकुर लिखते हैं, एसोसिएटिंग विद द अपोजिट सेक्स इज वेरी इनऑस्पिशियस फॉर द एडवांसिंग डिवोटी। तो उनका बोलना है कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा है, स्त्री को पुरुष का संग और पुरुष का स्त्री का संग बिल्कुल वो क्या है, अमंगलकारी है, क्योंकि उसके भक्ति में आगे बढ़ता नहीं व्यक्ति। तो इसलिए पुराने जमाने में कैसे रहता था, स्त्री और पुरुष का संबंध सिर्फ वैवाहिक जीवन के लिए आता था, नहीं तो स्त्री अंदर रहती थी माताओं के साथ और पुरुष लोग अपने भाई के साथ बाहर रहते थे। लेकिन अभी फ्लैट सिस्टम में ना भाई रहते हैं ना कोई कोई नहीं रहता वहाँ पर, सिर्फ पत्नी और पति रहते। तो इस समय इस प्रकार अगर व्यक्ति इतना संपर्क में आएगा तो उसका चेतना भक्ति की तरफ आकर्षित होना बहुत मुश्किल है। तो ये है छठा, जनसंघ। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए। और उसके आगे है, अच्छा, जो सबसे लास्ट है वो है लवल्य। तो हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है, लवल्यता होती है, यानी क्या, लोभीपन आता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्वाभाविक जगत में व्यक्ति लोभी है किसके लिए, धन संचय के लिए, या ऐश्वर्यों को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये लोभ से हमें बाहर जाना है, और हमारे अंदर क्या लोभ होना चाहिए, वो है कृष्ण भक्ति का। तो यहाँ पर बोला गया इंटेंस ग्रीड फॉर कृष्ण भक्ति। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। तो भक्ति में सिर्फ भगवान की सेवा या भगवान का गुणगान के लिए जो लौल्य है, ग्रीड है, वही एक मूल्य है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार हमें ये छह दुर्गुण है, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य, इससे अगर बचना है तो हमें हमारे अंदर अच्छे गुण लाना है। और ये अच्छे गुण अगर हमारे अंदर आएंगे तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल हो सकता है। तो हम सिर्फ गुरु के शरणागत लेकर ये जो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने जो नियम दिए हैं, चार नियम और 16 माला का जप, इस प्रकार हम अगर भगवान का प्रसाद एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इतना बोलकर मैं विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। कृपा करके कुछ त्रुटि हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय।